प्रियल के अचानक भागकर जाने की वजह से निक थोड़ा घबरा गया था। मोहित और नंदिनी को समझाने के बाद वो जल्दी से घर आया था। जब निक घर पर आया तब तक आलिया भी घर पर आ चुकी थी। सब अपने अपने कामों में लगे थे। सब ठीक तो है ना आलिया, निक ने आलिया से पूछा। हाँ भाई, पर अब्बू का वही सेम टॉपिक, शादी एंड ऑल, आलिया ने बताया। वो भी गलत नहीं है आलिया, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो या आगे बढ़ो। प्रिया लाई थी ना यहाँ, कहाँ है अब? मीटिंग रूम में फाइल चेक कर रही है, आलिया ने जवाब दिया। निक प्रियल के पास मीटिंग रूम में आया तो वो कुछ फाइल्स चेक कर रही थी। उसने कमरा बंद किया और प्रियल के पास आकर बैठ गया। तुम ठीक तो हो ना? ऐसे अचानक से भागकर आई तो मैं डर गया था। हाँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा आप उन दोनों को संभाल लेंगे तो मैं घर आ गई। मुझे वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, प्रियल ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। तुम मुझसे नज़रें चुरा रही हो, ऐसा तभी होता है जब हम किसी से कुछ छुपा रहे होते हैं। तुम तो पहले दिन से ही कुछ ना कुछ छुपा ही रही हो, पता नहीं कब सब कुछ बताओगी। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। आपको जन्नत बाजार क्यों नहीं गए अभी तक? आपको इस वक्त वहाँ होना चाहिए। आपको पता है ना, वहाँ बहुत सारे क्लू मिल सकते हैं, प्रियल ने इस बार निक की तरफ देखकर बोला। मुझे क्या करना है ये मुझे अच्छे से पता है। तुम जो काम दिया गया है उसे फिनिश करो, निक ने कहा। नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। अगर आप सुनहरी और रूपाली से दूर भागोगे तो उनके पास नहीं आ पाओगे। वो मुझ पर बहुत टाइट करती हैं और उन्होंने मुझे अपने सारे राज बता दिए हैं। निक की बात सुनकर प्रियल जोर जोर से हंसने लगी। हो रियली? उन दोनों ने आपको उतना ही बताया है जितना वो बताना चाहती थीं। अरे उन्होंने तो आपको जन्नत बाजार के पूरे हिस्से तक को नहीं घुमाया, और आप बात करते हो टाइट करने की, बोलते हुए उसकी आवाज़ सख्त हो गई। निक ने हैरानी से कहा, लेकिन मैं तो पूरे जन्नत बाजार में घुमाऊँ, मुझे कोई ऐसा सीक्रेट हिस्सा नहीं नज़र आया। आपको क्या लगता है कि एक आप ही अपने घर में सीक्रेट रूम बना सकते हो? जन्नत बाजार में भी ऐसे बहुत सारे दरवाजे हैं जो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, आपको तो अंदाज़ा भी नहीं है। और हर दरवाजे के पीछे एक राज। अगर आप जन्नत बाजार नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊंगी, प्रियल ने कहा। हाँ, तुम तो वही करना चाहती हो जिस काम के लिए मैं मना करूँ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूँ। वैसे भी आपने मुझे इस फ्लैट में कैद ही तो कर रखा है, दम घुटता है मेरा यहाँ पर। मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ, खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, प्रियल ने कहा। अच्छा, जन्नत बाजार में तो तुम बड़ा आराम से और आज़ादी से घूमती थी, जो तुम यहाँ अपनी उसी आज़ादी की याद आ रही है और तुम्हारा दम घुट रहा है, निक ने कहा। जन्नत बाजार दो कमरों का घर नहीं था, कम से कम वहाँ से खुला आसमान तो दिखता था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मुझे बाहर जाने दीजिए। तुम ये सब इसलिए बोल रही हो ना ताकि तुम मुझसे छुपकर जन्नत बाजार भाग जाओ, बात करते हुए वो दोनों आपस में बहस करने लगे। मेरा मकसद जन्नत बाजार जाना नहीं, वहाँ की लड़कियों को बचाना है। मैं क्यों जाऊँगी वहाँ पर, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। ज़रूरत नहीं तो कम से कम शॉपिंग करने के लिए भेज दीजिए ना, प्रियल ने कहा। निक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम आओ मेरे साथ। निक प्रियल को लेकर अपने रूम में आया और साथ में आलिया को भी बुलाया। आलिया, तुम प्रियल को अपना बुर्का लाकर दोगी ताकि वो खुद को कवर कर सके। इसे बाहर जाना है, अगर ये बुर्का पहन लेगी तो इसे कोई नहीं पहचान पाएगा, निक ने आलिया से कहा। ओके भाई, ला देती हूँ, कहकर आलिया वहाँ से चली गई। हाँ, लेकिन मुझे कुछ कपड़े भी चाहिए होंगे, मैं आपके कपड़े पहनकर थोड़ी ना बाहर जाऊँगी, प्रियल ने कहा। इस बुर्के में वैसे भी कुछ नहीं दिखेगा, मॉल जाकर बदल लेना, निक ने कहा। मैं आपकी इस पुरानी टी शर्ट और इस छोटे से लोअर में कहीं नहीं जाऊंगी, प्रियल ने गुस्से में कहा। तो फिर इस कमरे में बैठी रहो और बाहर जाने का ख्याल छोड़ दो, इन योर ड्रीम्स, प्रियल ने कहा और गुस्से में निक की अलमारी से सारे कपड़े निकालकर बाहर फेंकने लगी। अरे नहीं गुड़िया, ये मत करो, तुम्हें तो ठीक से सफाई भी नहीं करनी आती, और मैं इन्हें वापस मैनेज करने बैठ गया तो एक डेढ़ घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, निक ने उसे रोकने के लिए उसके हाथ पकड़ लिए। प्रियल ने खुद को निक की पकड़ से आज़ाद किया और उसके कपड़ों में कुछ टटोलने लगी। तभी उसकी नज़र वहाँ कुछ कपड़ों पर गई जो कि उसके थे। प्रियल ने अपने कपड़े वहाँ देखे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। निक के पास उसके कपड़े होने के बावजूद उसने प्रियल को नहीं दिए थे। आपके पास मेरे कपड़े थे और आपने मुझे नहीं दिए, अब इसका कारण बताओगे मुझे? ये तो मेरी वाइफ के हैं जिनसे मैं रात को हक करके सोता हूँ, अब वो पास नहीं है तो उसके कपड़ों से ही उसके करीब होने का एहसास दिलाते हैं, निक ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरे कपड़े हैं और मुझे चाहिए, नहीं मिलेंगे, और अगर ये कपड़े चाहिए तो मेरी भी एक शर्त है, निक ने कपड़े छीनते हुए कहा। मैं मानूं आपकी शर्त? ये मेरे कपड़े हैं और मुझे चाहिए, ठीक है दे दूंगा, लेकिन रात को इन कपड़ों की जगह तुम आ जाना। तुम हक करके सो जाओगी तो फिर कपड़ों को हक करके सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलो मंजूर है ना? निक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, मैं दूसरे खरीदूंगी, प्रियल ने उसका हाथ झटक दिया। और पैसे कहाँ से आएंगे? आप भूल रहे हो कि आपके अलावा और भी लोग हैं इस घर में जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, प्रियल ने कहा। अच्छा, लड़ाई झगड़ा मजाक मस्ती सब बहुत हो गया, तुम जाकर नए कपड़े खरीद लो। मैं तुम्हें अपना कार्ड नहीं दे सकता क्योंकि हमारी आईडी प्रूफ यहाँ पर रियल नहीं है, पर हाँ मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ, तुम जो चाहिए वो ले लेना। बोलते हुए निक अलमारी की तरफ बढ़ा और उसमें से कुछ पैसे निकालकर प्रियल को दिए। मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगी, प्रियल ने पैसे लेते वक्त कहा। उसकी बात सुनकर निक मुस्कुराया और उसके पास आकर गाल पर एक किस कर दिया। पहले मुझे ये वापस चाहिए। बहुत बदतमीज हो रहे हो आप। निक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब तक आलिया भी वहां आ चुकी थी, उसने अपना बुर्का आलिया को दिया। प्रियल अंदर अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी तब तक निक और आलिया बाहर आ गए। निक ने बाहर आकर उन सबको प्रियल के शॉपिंग जाने के बारे में बताया। उसके इस डिसीजन से एमा और जीनी दोनों ही नाराज थीं। तुम सब कुछ सच जानने के बावजूद भी इसे बाहर कैसे भेज सकते हो? तुम ऐसे रिस्क कैसे ले सकते हो निक? अगर उन चुड़ैलों ने इसे पकड़ लिया तो, जीनी ने कहा। प्रियल ने उसकी बात सुन ली थी और बाहर आकर कहा, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, निक ने कहा। मतलब तुम भी इसके साथ जा रहे हो? एमा ने पूछा। मतलब मैं इसके साथ जा तो नहीं रहा, लेकिन इसे जाते वक्त मॉल जरूर ड्रॉप कर दूंगा, निक ने जवाब दिया। प्रियल, मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, परी भी साथ चलेगी तो ज्यादा सही रहेगा, तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा, शॉपिंग भी और सेफ्टी की भी कोई टेंशन नहीं होगी, आलिया ने कहा। लेकिन मुझे अकेले जाना है, प्रियल ने कहा। सेफ्टी से याद आया कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है ना, ये लो इसे रख लो, हमें कॉल करना होगा तो दिक्कत नहीं होगी, और आते वक्त अपने लिए एक मोबाइल भी ले आना, निक ने अपना मोबाइल देते हुए कहा। मैं आपका फोन कैसे लेकर जा सकती हूँ अगर इस पर किसी का कॉल आया तो? और इसमें और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसकी आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, प्रियल ने फोन लेने से मना कर दिया। तुम रुको, मेरे पास एक और एक्टिव मोबाइल है, मैं तुम्हें वो ला कर देता हूँ, लेकिन 2 घंटे मतलब 2 घंटे, उसे 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और तुम्हें थोड़ा भी खतरा नजर आए तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल करोगी, निक ने कहा।
आप लोग तो सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं बच्ची हूँ, मैं भी अडल्ट हूँ, मुझे पता है कि कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, प्रियल ने कहा। निक ने अंदर से प्रियल को एक दूसरा मोबाइल लाकर दिया। उन सबको बाय बोलकर वो दोनों वहां से जा चुके थे। निक ने उसे मॉल के बाहर ड्रॉप किया और वहां से वो सीक्रेट एजेंसी के ऑफिस चला गया। प्रियल मॉल में शॉपिंग कर रही थी और शॉपिंग के बाद इधर उधर घूम रही थी। आज लग रहा है कि अपनी वही पुरानी जिंदगी वापस मिल गई है। बस एक बार जन्नत बाजार की लड़कियां भी ऐसे ही खुली हवा में सांस ले लें तो फिर मैं भी चैन से रह सकती हूँ, प्रियल खुद से बातें करते हुए इधर उधर घूम रही थी। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। प्रियल को गए लगभग 1.5 घंटे बीत चुके थे। निक अपनी सारी मीटिंग्स और काम निपटा चुका था और एजेंसी के ऑफिस से बाहर आया। होपसो गुड़िया ने अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली होगी और उसका सो कॉल्ड खुली हवा में सांस लेने का सपना भी पूरा हो गया होगा। उसके इसी बचपने की वजह से मुझे डर लगता है कि कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए, निक सोच रहा था कि तभी मिक के मोबाइल पर एक कॉल आया। लगता है गुड़िया ने कॉल किया होगा, अब तो वापस लेने भी जाना पड़ेगा मुझे, ये तो कोई न्यू नंबर लग रहा है, निक ने कॉल पिक करके बोला। हेलो, कौन? अरे साहब, मैं बोल रही हूँ आपकी रूपाली, आपको एक गुड न्यूज़ देने के लिए फ़ोन किया है, रूपाली ने कहा। उसकी बात सुनकर निक ने सोचा, इनकी गुड न्यूज़ मतलब हमारे लिए बैड न्यूज़, पता नहीं अब क्या कांड किया इन लोगों ने। फ़ोन का स्पीकर ऑन था, अगली आवाज़ सुनहरी की आई। क्या कहा था साहब आपको कि उसको पकड़ कर ही दम लेंगे? चिड़ियाँ पिंजरे में वापस आ गई हैं, जाल भी तो काफ़ी अच्छे से बिछाया था हम लोगों ने। उसकी बात सुनकर निक बुरी तरह घबरा गया। उसने खुद की घबराहट को काबू करके कहा, तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? आप जन्नत बाजार में आ जाइए, सब पता चल जाएगा। याद तो है ना, उस रात जो 2 पक्षी उड़ गए थे तो उनमें से एक को पकड़ लिया है। अब एक पकड़ा गया है तो दूसरा अपने आप पीछे पीछे उड़कर आएगा। चलिए अब जल्दी आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और ताई, तुम भी इस बार रिश्ते मत निभाने लग जाना, रूपाली ने कहा। रिश्ते गए भाड़ में, मार मार के चमड़ी नहीं उधेड़ दी तो मेरा नाम बदल देना। बस साहब आप आ जाइए, सुनहरी ने कहा। लेकिन मेरे आने से पहले तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगे, निक ने कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन आप जल्दी पहुंचिए, रूपाली ने कहा। ये बोलकर रूपाली फोन काट दिया। निक भी समझ चुका था कि 2 पक्षी से उनका मतलब फुलवा और जन्नत से था। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, फुलवा तो एंजॉय न है तो उसका पकड़ा जाना तो इम्पॉसिबल है, सीक्रेट एजेंसी भी काफी टाइट है वहां की। इसका मतलब गुड़िया, अब मैं उसे कैसे बचाऊंगा? उसने गुस्से में गाड़ी के पैर से किक मारी और आगे कहा, ओह गॉड, ये क्या हो गया? जीनी और एमा तो मेरी जान ले लेंगी, परी को क्या बोलूंगा? अगर उन लोगों ने प्रियल को हाथ भी लगाया तो मैं उन्हें उसी वक्त शूट कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे आईडी प्रूफ ही क्यों ना रिवील करनी पड़े। निक ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। सब लोग घर पर ही होंगे, पहले मुझे घर पर जाना पड़ेगा। सब मिलकर जन्नत बाजार जाएंगे तो शायद कुछ कर भी पाएं। मिस्टर मुखर्जी को बोलता हूँ एक बैकअप टीम रेडी करने के लिए। निक रूपाली से बात करके बिल्कुल हड़बड़ा गया और जल्दी से जल्दी अपने घर आया।